गोश्त पे, चिकन पे और सारी ग्रोसरी पे इन्होंने जबरदस्त सेल लगाई हुई है। पहुंचिए खुद ही अपने मोमिन हलाल मीट एंड ग्रोसरीज पर और यहां पर जाके इनकी सेल का फायदा उठाइए। 1010 ड्रीम क्रेसेंट 416-854-8962 416-854-8962 इनका फोन नंबर है। इसके साथ साथ राइट कस्टम कैबिनेटरी मेकर्स विद परफेक्ट टच लेटेस्ट 3D कंप्यूटर डिजाइन के साथ आपको बताएंगे। इटालियन यूरोपियन मैन्युफैक्चरिंग है। किचन बाथरूम काउंटर टॉप्स क्लोजेट रेनोवेशन के लिए फाइनेंसिंग 12 महीने की देते हैं, मींस के देयर इज नो इंटरेस्ट नो पेमेंट, आप इसका फायदा उठा सकते हैं। आपने कॉल करना है सैफ को राइट कस्टम कैबिनेटरी इंक के 647-384-73 इनका फोन नंबर है। लास्ट बट नॉट लीस्ट हेयर मैक्स की बात कर चलूं, अगर आप या आपके घर में किसी के भी कानों में भाई सुनने में कमी आ गई हो या सुनने में कमी आ रही हो तो आप हेयर मैक्स के शिराज साहब से कॉन्टैक्ट कर लें और शिराज साहब जो है वो अगर आप साजो आवाज का हवाला देंगे तो आपकी जो हेयरिंग टेस्ट है वो एब्सोल्युटली फ्री कर दिया जाएगा। हेयर मैक्स के शिराज साहब का फोन नंबर है 416-792-8792 इनका फोन नंबर है जी।
हाँ जी, पाकिस्तान के अंदर PMLN के जो लीडर हैं दानियाल अजीज साहब, उन्होंने अपने ही जो दोस्त हैं एक एहसन इकबाल साहब उनके ऊपर आज बड़े इल्जाम लगाए हैं और उन्होंने कहा जी कि ये मुल्क के अंदर जो कोई भी इन्फ्लेशन आई है वो इनकी वजह से आई है, वो अपने आप को फाइनल अथॉरिटी समझते थे ऑन लोकल गवर्नमेंट्स और कभी भी उन्होंने जवाब नहीं दिया जब भी कभी गवर्नमेंट ने उनसे पूछा, और वो जो है ये इन्फ्लेशन जो थी इसका सर्कल तोड़ नहीं सके जब व्हेन ही वॉज चेयरमैन ऑफ प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी, तो उन्होंने कोई फाइंड आउट करने की कोशिश नहीं की कि क्या वजह है कि मुल्क के अंदर इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा ऊपर चली गई है। इनकी इनकॉम्पिटेंस की वजह से PMLN पूरी गवर्नमेंट जो है वो फेल हो गई पब्लिक लेवल के ऊपर और उसकी वजह से जो है बड़ा झेलना पड़ा PMLN की, यानी कि बैड रेप्यूटेशन आई, क्योंकि PMLN के बारे में यह मशहूर है कि वह जब भी कभी गवर्नमेंट में आते हैं वह इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं, लेकिन पार्टी की रेप्यूटेशन बहुत डैमेज हुई इनकी हरकतों की वजह से, क्योंकि ये जो है ना तो कॉजेज फाइंड आउट कर सके ना तो फाइंड आउट कर सके कि कैसे हमने उस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, और उसकी वजह से पूरी गवर्नमेंट जो थी उसको बैड नेम मिला। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा साहब जो हैं उन्होंने दो लग्जरी कार्स जो हैं वो वापस कर दी हैं और उन्होंने कहा जी गवर्नमेंट को कि ये आप मेरे से ले लो और इसको सेल कर लो, क्योंकि इतने गरीब मुल्क में मैं इतनी एक्सपेंसिव गाड़ियां जो है वो नहीं रखना चाहता हूं। उन्होंने एक लेटर जो है सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार को कहा है कि लिखने के लिए कि फेडरल गवर्नमेंट के जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं और पंजाब चीफ सेक्रेटरी हैं उनको आप भेजो और उनसे कहो जी कि ये गाड़ियां जो हैं ये ले ली जाएं। और ये गाड़ियां सुप्रीम कोर्ट ने परचेज की थी सितंबर 2020 में, एक तो थी न्यू मर्सिडीज कार और एक थी 2996 सीसी सीडान और ये जो थी खरीदी थी 61 मिलियन के ऊपर रुपीस पे चीफ जस्टिस के लिए, और एक ब्रांड न्यू बुलेट प्रूफ टोयोटा लैंड क्रूजर भी ली थी जिसका कि रजिस्ट्रेशन नंबर था LEG S00। तो वो कहते हैं जी कि ये भी गवर्नमेंट ऑफ जो पंजाब है, दो गाड़ियां उसकी हैं फेडरल गवर्नमेंट की और एक जो पंजाब गवर्नमेंट की है वो आप इनको वापस कर दें। वो कहते हैं जी कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का रेस्ट हाउस है लाहौर के अंदर गोर के एरिया में, वहां पे ये खड़ी हुई हैं, आप इसको ले जाके बेच सकते हैं। जस्टिस ईसा साहब जो है उन्होंने ओथ लिया था एज 29th चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और September 5th, 2014 जब उमर अताब बंदयाल जो थे उन्होंने कहा था कि अब वो कंटिन्यू नहीं करेंगे, लेकिन इनका बहुत ही ब्रीफ रहेगा जो टेन्योर है और October 25th, 2024 को इनकी पोजीशन जो है वो खत्म, यानी कि इनका टेन्योर जो है पूरा हो जाएगा, खत्म हो जाएगी इनकी पोजीशन एज चीफ जस्टिस। पाकिस्तान के अंदर तो जनाब अजीब अजीब मामलात सामने आ रहे हैं, आप देखें औरतें कितनी जो हैं वो हो गई हैं बहादुर हो गई हैं। 50 टेररिस्ट विमेन टेररिस्ट जो हैं उनकी आज लिस्ट जो है पाकिस्तान के अंदर काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने जारी की है। वो कहते हैं जी कि केपी के इलाके में सिंस 2014 ये 50 औरतें टेररिस्ट एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व हैं, इसमें से जो 13 हैं वो इंसिडेंट्स ऑफ टेररिज्म और 13 जो हैं वो किडनैपिंग्स और 2 जो हैं एक्सटॉर्शन और 3 जो हैं टारगेट किलिंग और टेरर फाइनेंसिंग के अंदर इन्वॉल्व थी। देखो पयान कितना कितनी तरक्की कर ली है पाकिस्तान ने, है फीमेल टेररिस्ट, वाह जी वाह क्या बात है, और तो किसी चीज के ना तो दिमाग चल ही नहीं रहा। तो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के जो डीआईजी हैं इमरान शाहिद, वो कह रहे हैं जी कि इंटेलिजेंस और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो थे वो बहुत ज्यादा डिफिकल्टी फेस कर रहे थे, क्योंकि आपको पता ही है कि केपी जो है खैबर पख्तून का, उसका जो कल्चर है और ट्रेडिशन जो है बहुत ही जो है वो है जरा कंजर्वेटिव है। तो हम किसी के घर में जाके और ऐसे किसी के ऊपर पिन पॉइंट करके या इल्जाम लगा के जो है किसी को पकड़ नहीं सकते थे, तो हमें बहुत ज्यादा मुश्किलें आई, हमें पता नहीं चल रहा था कि ये फीमेल टेररिस्ट और क्रिमिनल्स जो हैं इनके लिंक्स किन के साथ हैं, कोई हमें सोर्सेज नहीं मिल रहे थे। बहरहाल बहुत अनथक मेहनत करने के बाद ये हमने फाइंड आउट इनके लिंक्स किए और अब इनको पकड़ा है। और ये जो बहुत सारे ये टेरर फाइनेंसिंग, टारगेट किलिंग, टेररिज्म, किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन के जो केसेस थे, ये केपी के डिफरेंट पुलिस स्टेशन के अंदर रजिस्टर्ड थे, तो उनसे फिर हमने लेते हुए इन औरतों को पकड़ा। लै जी यह देखो जी, मतलब ये मर्द अजे कट सन, औरतां भी शामिल हो गई। वाह जी वाह क्या बात है। और जनाब, क्या नवाज शरीफ साहब चौथी दफा प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं? आज इसके ऊपर बहस जो है फिर से शुरू हो गई है मुल्क के अंदर, जो है लोगों ने फिर से जो पीएमएलएन के जो सोर्सेज हैं उनसे पूछना शुरू किया। उन्होंने कहा जी कि नवाज शरीफ साहब की ऐसी कोई इंटेंशन है? उस सोर्स ने कहा कि नवाज शरीफ साहब की तो शायद इस तरह की अब कोई इंटेंशन नहीं है कि वो फोर्थ टाइम प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं। पायना की इंतहाई सोर्स गलत है, वो बनना चाहते हैं, हम आपको बता रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं जी कि ये जो आपकी जो पार्टी ने स्लोगन लिया हुआ है कि जो सबसे अच्छा बेहतरीन जो रिवेंज है वो आप ले सकते हैं डेमोक्रेसी के थ्रू, और इस तरह के नवाज शरीफ साहब जिसको कि आपने उसकी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को खत्म किया था 2017 में, तो वो अब फिर से प्राइम मिनिस्टर बन के आ गया। तो वो कहते हैं जी इन नारों का फिर क्या मतलब है? उन्होंने कहा जी हमें अभी तक पता नहीं है इसके बारे में और ना ही पार्टी के लेवल पर उन्होंने बात की है। हाँ, अगर अपने क्लोज निट शरीफ फैमिली सर्कल में अगर उन्होंने कोई बात की है तो उसके बारे में हमें पता नहीं है। लेकिन शायद ये नारे इसलिए लगाए जा रहे हैं कि पीएमएलएन जो है उसकी तरफ ज्यादा से ज्यादा वोटर्स को बुलाया जा सके। लेकिन हो सकता है कि उनके भाई शहबाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम जो हैं उसके बारे में डिस्कस किया जाए कि उनको जो है प्राइम मिनिस्ट्री मुल्क की दी जा सकती है। मतलब कितना जुल्म है इस मुल्क दे विच, यानी होर ते कोई लायक बंदा है ही नहीं ना इस मुल्क दे विच मरियम बीबी को ज्यादा, या शहबाज शरीफ साहब ने भी पीडीएम की गवर्नमेंट चलाई थी ना, क्या तीर मारे हैं, वो तीर आप देख ही नहीं, आपके सामने ही है। अच्छा जनाब, आज हिंदुस्तान के अंदर द वायर की दो स्टोरीज हैं एंड ब्रिलियंट स्टोरीज हैं। ये जो दो अदारे हैं ना जी, द वायर एंड द प्रिंट, ये अभी भी बड़ा सा रखते हैं, बड़े इसमें सीनियर जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं और शायद किसी के दबाव में भी वो नहीं आते हैं और डरते भी नहीं हैं, बड़े दलेर हैं। मेरा सलाम है इनको, इन जर्नलिस्टों को हिंदुस्तान में मेरा सलाम है, ये जो वायर के साथ और द उसके साथ हैं, प्रिंट के साथ हैं। द वायर की ये स्टोरीज हैं दो जो कि मैंने क्लब की हैं और इसके अंदर मैं आपको बताना चाहती हूं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं जी कि हिंदुस्तान के ऊपर ये जो एलिगेशंस अभी रिसेंटली लगाए गए हैं, एक तो ट्रूडो साहब ने पहले कहा था कि जी इंडियन गवर्नमेंट के लिंक्स हमको मिले हैं और क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है हमारे पास कि निजर साहब की किलिंग के अंदर आप इन्वॉल्व हैं, और अब जो यूएस ने ये इंडाइक्ट किया है, इसकी जो न्यूयॉर्क की कोर्ट ने कि जी इंडियंस जो हैं उनको हमने एक इंडियन को हमने आइडेंटिफाई किया जिसका कि लिंक इंडियन गवर्नमेंट के साथ है, तो वो कहते हैं जी कि ये इस तरह की जो चीजें सामने आ रही हैं मोदी जी और जो अभी बातें भी हुई थी पिछले दिनों में अमेरिका के लीडर्स की, उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की अजीत डोवाल साहब के साथ और फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब के साथ और मोदी जी के साथ भी, जो कल हमने आपको पूरी रिपोर्ट सुनाई थी उसके बैकग्राउंड में ये लिखी है। तो वो कहते हैं जी कॉन्स्टेंटली इन सबको बता रहे थे कि अमरीका के अंदर कुछ खालिस्तानी एलिमेंट्स जो हैं उनको मारने की, हालांकि वो हैं यूएस सिटीजन, तो उनको मारने की कोशिश जो है इंडियन गवर्नमेंट के कुछ ऑफिशियल्स कर रहे हैं, तो आप जरा इसके ऊपर ध्यान दें, तो बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया। वो कहते हैं जी कि मोदी जी जो है हर दुनिया के समिट में जाके बोलते हैं कि भारत का इस वक्त जो जो है स्टेचर है वो विश्वगुरु, यानी कि दुनिया सारी का उस्ताद जो है उसका है। तो अगर आप दुनिया सारी के उस्ताद हैं तो फिर आप अथॉरिटेरियन कंट्रीज लाइक रशिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया की तरह कैसे बिहेव कर सकते हैं और कैसे ये अलेज क्राइम्स जो हैं फॉरेन सॉइल पे आप जाके कर सकते हैं, क्योंकि ये लोग जो थे ये करते होते थे, एक डेमोक्रेटिक कंट्री को ये करना अच्छा नहीं लगता। और अगर इंडिया ने ये सब कुछ किया तो अपने डेमोक्रेटिक अलायंस जो है उनके साथ ये अलायंस जो है उनके साथ ये दोस्तियां जो है शायद खराब कर बैठेंगे। वो कहते हैं जी कि एक हिंदुस्तान के अंदर इस वक्त एक साइलेंस है और गांधी जी का जो असैसिन था नथुराम गोडसे उसके साथ ज्यादा हिंदुस्तान इस वक्त अपने आप को अलाइन कर रहा है और गोडसे की जो आइडियोलॉजी ऑफ रिवेंज थी उसको फॉलो कर रहा है और गांधी की जो आइडियोलॉजी ऑफ पीस एंड नॉन वायलेंस थी उस जिसकी वजह से दुनिया सारी ने हिंदुस्तान की रिस्पेक्ट की और उसको फॉलो किया उससे पीछे हटता जा रहा है। वो कह रहे हैं जी कि मोदी जी का न्यू इंडिया जो है उसके अंदर जो है हिंदुत्व आइडियोलॉजी को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है और जो एक वेंजेंस सीकिंग माइंड सेट जो है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है, जो कि हिंदुस्तान जैसे मुल्क के लिए बहुत खराब है। और वो कहते हैं जी कि दिस हैज गॉट नथिंग टू डू विद सोशल जस्टिस, ये सब कुछ जो है ये सिर्फ रिवेंज करके लिए जो है ये किया जा रहा है, लेकिन इससे हिंदुस्तान का इमेज दुनिया के अंदर रिग्रेस करता जा रहा है। और जो है इसको भी अब अलाइन किया जा सकेगा कुछ अरसे के बाद अथॉरिटेरियन नेशन स्टेट्स के साथ। वो कहते हैं जी कि जो पहले ट्रूडो साहब ने एलिगेशन लगाए और अब जो यूएस ने इंडाइक्टमेंट की है गुप्ता साहब की, उसके ऊपर इंडिया का इंतहाई रेकलेस जो है वो रिस्पॉन्स है, और उसने अपने आप को बहुत ही वल्नरेबल पोजीशन में डाल दिया है क्योंकि वो उसके ऊपर कुछ भी काम करने की उसको जरूरत नहीं है। वायर का ये आर्टिकल कहता है कि अगर कोई भी इंडियन गवर्नमेंट और उसकी लीडरशिप अगर थोड़ी सी भी वाइज है, थोड़ी सी भी समझदार है, तो ये जो इनका लैक ऑफ कॉम्पिटेंस है जो कि इनको आके वापस आके बाइट कर रहा है, इसके लिए ये संजीदगी से सोचेंगे और इन चीजों के एलिगेशन के बारे में काम करने की कोशिश करेंगे। वायर की यह स्टोरी कहती है जी कि कोविड ऑपरेशन क्या होता है। कोविड ऑपरेशन ये होता है अगर आप करना चाहते हैं तो वो उसके ऑब्जेक्टिव्स हासिल होने चाहिए, और अगर उसके ऑब्जेक्टिव्स हासिल नहीं होते हैं तो फिर आप उसको डिनाय करके पीछे आ जाते हैं उससे। लेकिन दिस हैज एग्जैक्टली हैपेंड कि यू हैव बीन कॉट बोथ टाइम्स, कि निजर साहब के केस में भी आप पकड़े गए और पन्नू साहब के केस में भी आप पकड़े गए। नहीं पाया ना आपने एक चीज जो है इधर जो है आप फॉरगेट कर गए, इसके अंदर जो है वो पाकिस्तान में बहुत पहले जो है जादेव साहब पकड़े गए थे, और उसके बाद थोड़े दिन अभी पहले जो है कतर के अंदर भी 8 नेवल अफसर आपके स्पाइंग करते हुए पकड़े गए हैं, तो वो आप चीजें दोनों भूल गए। बहरहाल उसका हम जिक्र नहीं करते, हम इन्हीं का करते हैं। आज एक ये जो दूसरी स्टोरी है हिंदुस्तान से, ये भी बहुत ज्यादा जो है आंखें चुकाने वाली है। जैसे कि हमने कहा कि हम तो हिंदुस्तान को बड़ा आइडियल समझते थे फ्रीडम ऑफ प्रेस, एज फार एज फ्रीडम ऑफ प्रेस इज कंसर्न उसके हिसाब से, लेकिन आज 400 सिग्नेटरीज जो हैं हिंदुस्तान के अंदर बिलोंगिंग टू मीडिया, सोशियोलॉजिस्ट हैं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, एकेडेमिशियंस हैं, रिसर्चर्स हैं, वो कह रहे हैं जी कि ये क्या तमाशा चल रहा है कि यूनिवर्सिटियों के अंदर जिस वक्त पैलेस्टाइन के ऊपर बात होती है तो उसको जो है साइलेंट किए करे जाने की कोशिशें जो हैं वो अथॉरिटीज शुरू कर देती हैं। ये जो यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं या गवर्नमेंट्स हैं इनके जो अदारे, यानी कि जो गवर्नमेंट रन जो यूनिवर्सिटीज हैं, जो गवर्नमेंट के अदारे हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर जो है वो रोक नहीं लगा सकते हैं। हम ये समझते हैं कि जो यहां पे पैलेस्टाइन के अंदर हो रहा है, ये स्टेटमेंट कह रही है उनकी जो सिग्नेटरीज है उनकी, वो कह रहे हैं जी हम देख रहे हैं कि जो कुछ पैलेस्टाइन के अंदर हो रहा है वो बिल्कुल गलत है, तो हम हिंदुस्तान के हर बंदे को ये रिमाइंड करना चाहते हैं कि आपकी अपनी खुद की वन ऑफ द लॉन्गेस्ट हिस्ट्रीज है एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल के ऊपर, और पैलेस्टीनियंस भी अपना सेल्फ डिटर्मिनेशन, इक्वालिटी, ह्यूमन राइट्स के लिए फाइट कर रहे हैं, और ये जो एक एंटी कॉलोनियल जो ये है अपनी स्ट्रगल चला रहे हैं इजराइल के अगेंस्ट। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखेंगे तो पैलेस्टाइन के ऊपर बहुत बारबेरिक किस्म का असॉल्ट किया है इजराइल ने, और आप बार बार ये कह रहे हैं कि 7 अक्टूबर को क्या हुआ, 7 अक्टूबर को क्या हुआ, बहुत अरसे से जो इन्होंने ऑक्यूपाई किया हुआ पैलेस्टाइन को, उनको फूड नहीं लेने देते, फ्यूल नहीं लेने देते, वाटर नहीं लेने देते, सिविलियंस के ऊपर अटैक करते हैं, तो कैसे हो सकता है कि हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटियां जो है इस बात को हाईलाइट ना करें और इसको ना उठाएं। और इसके अलावा हम कंडेम करते हैं यह भी कि जो इजराइल का जो अंबेसडर है हिंदुस्तान के अंदर वो कॉन्स्टेंटली हमारी जो एकेडेमिक फ्रीडम है हिंदुस्तान की उसके अंदर इंटरफेयर कर रहा है, और ये डिसरिस्पेक्ट शो करती है ये चीज, वो ये शो करती है कि शायद हिंदुस्तान के अंदर केपेबल स्कॉलर्स जो हैं वो नहीं हैं। तो हमको अगर पैलेस्टीनियंस की राइट टू लाइफ और डिग्निटी के ऊपर हम बात कर रहे हैं तो ये हमारा एकेडेमिक फ्रीडम का हिस्सा है। और उन्होंने ये भी कहा कि ये अगर हम जायनिज्म या हिंदुत्व के ऊपर बात करते हैं तो ये कोई भी हम एंटी सेमेटिक कॉमेंट्स जो है वो नहीं दे रहे, तो इसको जो है वो खत्म किया जाए, और हम कंडेम करते हैं ये चीजें क्योंकि इससे जो है इस्लामोफोबिया बहुत ज्यादा हिंदुस्तान में फैलता जा रहा है। इसके साथ साथ वो जर्नलिस्ट जो ये सब खबरें जो है कवर करते हैं इंडिया के अंदर, और जिन्होंने के खासतौर पर अदानी ग्रुप के ऊपर जो हिंडनबर्ग की जब रिपोर्ट आई थी करप्शन की, तो उसके ऊपर भी मुझे रिपोर्ट किया था, तो उन सारे जर्नलिस्टों को भी पकड़ा था। तो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है उसने कहा है कि ये इनका काम है कि अगर ऐसी कोई बात सामने आती है तो उसको सामने लेके आना। तो खास तौर पे जो 4 जर्नलिस्ट जिन्होंने बहुत ज्यादा स्केथिंग रिपोर्ट्स लिखी थी, बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया था अदानी ग्रुप को और जिनको के सजाएं दी गई थी, आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनको फौरन छोड़ें। गुजरात पुलिस इनको उठाकर ले गई थी और उन्होंने कहा जी कि इनको फौरन छोड़ें, ये सिर्फ अपना काम कर रहे थे। तो मतलब मुझे लगता है कि बोथ साइड ऑफ द डिवाइड जो है उसमें जरा आजकल थोड़ी सी खिलबिली है, मची हुई है, जर्नलिस्टों को काम नहीं करने दे रहे. अच्छा जनाब, आज दो हुई हैं फिल्में हिंदुस्तान के अंदर रिलीज. एक तो जो हुई है आपको हम बता ही रहे थे बहुत दिनों से, रणवीर कपूर की जो है, रणबीर कपूर की एनिमल, ठीक है जी. और इसके ऊपर जो है इस फिल्म को जिसको बनाया था संदीप रेड्डी वंगा ने, तो इसमें लोगों ने ना सिर्फ जो है रणबीर की बल्कि ये जो उसके साथ लीड रोल में है रश्मिका मंदाना, ये साउथ की हीरोइन है, और बॉबी देओल, इनकी भी जम के तारीफ की. एक्स के ऊपर जो है लोग जो हैं दे आर गोइंग एब्सोल्यूट गागा. वो कह रहे हैं कि ये फिल्म ब्लॉकबस्टर नहीं, मेगा ब्लॉकबस्टर फिल्म है, और रणबीर ने इसके अंदर मेस्मराइजिंग परफॉर्मेंस दी है, और आज तक कभी हम सोच नहीं सकते थे कि ये इतनी जबरदस्त और इनक्रेडिबल किस्म की ये परफॉर्मेंस दे सकता है. कुछ लोगों ने कहा कि ही इज द बेस्ट एक्टर ऑफ इंडिया, टेरिफिक, आउटस्टैंडिंग, माइंड ब्लोइंग, इंटेंस. और उन्होंने कहा जी कि ये एक मस्ट वॉच फिल्म है, तो आपको जरूर देखनी चाहिए. ठीक है माजिद भाई, मस्ट वॉच है, मस्ट वॉच है, मस्ट
वॉच है.
अच्छा, दूसरी फिल्म जनाब आज आई है सैम बहादुर. सैम बहादुर का भी रिव्यू जो है बहुत ही मस्त किस्म का आया है. ये इसके अंदर जो जो फर्स्ट इंडिया के फील्ड मार्शल थे सैम मानेकशॉ, उसके ऊपर ये फिल्म बनाई है, बायोपिक है ये, और ये भी आज रिलीज हुई है. और विकी कौशल जो है सैम मानेकशॉ का रोल कर रहे हैं. लोगों ने आज जम के तारीफ की विकी कौशल की भी, और उन्होंने कहा कि क्या जबरदस्त इसने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है सैम बहादुर के रोल में. लोगों ने आज ट्विटर के ऊपर लिखा कि हमारे तो गूज बम्स रेज हो गए हैं जब इसने ये इस तरह का जबरदस्त किस्म का अवार्ड विनिंग कैरेक्टराइजेशन उसका जो है शो किया है. और वो कहते हैं जी कि इस तरह की ऑथेंटिक इंडियन हीरोज जो हैं उनके ऊपर फिल्में बनानी जो हैं वो ज्यादा जरूरी हैं. तो जनाब लोगों ने बढ़ी है. ठीक है माजिद भाई, फिर एक मस्त फिल्म है आपको देखनी पड़ेगी, मस्त वॉच, मस्त वॉच है. ठीक है. और जनाब शाहरुख खान की जो फिल्म दुनकी जो अभी आएगी, रिलीज होगी दिसंबर 21 को, उसका एक गाना आया है, निकले थे कभी हम घर से. बड़ा ही इमोशनल गाना है. ये शो करता है कि जो अपने मुल्क छोड़ के दूसरे फॉरेन लैंड्स में जाके बस जाते हैं. शाहरुख खान ने अपने आज जो है वो सोशल मीडिया पे कहा कि ये मेरा बहुत ही फेवरेट ट्रैक है फिल्म का, और ये रिवॉल्व करती है फर्स्ट फिल्म की जो स्टोरी है अराउंड डोंकी फ्लाइट्स. डोंकी फ्लाइट्स क्या होती हैं कि आप इलीगल रूट्स लेते हैं, और एज इलीगल माइग्रेंट जो हैं वो किसी ना किसी कंट्री में अदर देन इंडिया आप एंटर, जाहिर है इंडिया से भाग के आप एंटर होते हैं, जैसे कि ज्यादातर ये इंडिया से लोग यूएस कैनेडा में आते हैं, तो वो उसके ऊपर है. तो ये बड़ी ही इमोशनल सी फिल्म है, और गाना तो इसका शाहरुख खान साहब कहते हैं मेरे दिल के बड़े करीब है. ठीक है जी,
सुनना पड़ेगा जी.
पाया ने मैं तुम्हें पहले क्या सी सुना दे, मस्त मैंने कहा था ये सुनाना, लेकिन आपने ये मस्त मेरी जो विश थी ये आपने बिल्कुल ही बस जो है ना मस्तों में उड़ा दी. अच्छा जनाब, आज पीसीबी ने अनाउंस किया है कि जो फॉर्मर क्रिकेटर्स थे सलमान बट और कामरान अकबर, ओ माय गॉड, राव इफ्तिखार अंजुम, इन सबको एज कंसल्टेंट्स हायर किया है, एंड दे विल रिपोर्ट टू पीसीबी चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज. और उन्होंने कहा जी कि ये जो अपकमिंग 5 मैच T20 सीरीज न्यूजीलैंड के साथ हो रही है जनवरी 12 से 2024 में, और एट द एंड ऑफ द ऑस्ट्रेलियन टूर जो कि अभी शुरू हो रहा होएगा वहां पे इसी महीने में ऑस्ट्रेलिया में, तो उसके बाद ये जो है ये सारा करेंगे. और वो कहते हैं जी जिस वक्त ये इस तरह की सर्विसेज नहीं दे रहे होंगे तो स्किल्स कैंप्स जो है वो चलाएंगे. अकमल साहब जो है जी, उन्होंने 15 साल का उनका करियर है, 53 टेस्ट उन्होंने खेले हैं, 157 ODIs, 58 T20s. राव ने 1 टेस्ट, 62 ODIs, 2 टेस्ट बिटवीन 2004 एंड 2010. बट ने 33 टेस्ट, 78 ODIs, 24 T20s. लेकिन जो है लोगों ने आज इसके ऊपर बहुत ज्यादा एतराज किया पीसीबी पे. उन्होंने कहा कि ये सलमान बट जैसे लोगों को आपको लाने की क्या जरूरत है, यानी कि बाकी दे मर गए, क्योंकि इसके ऊपर जो है स्पॉट फिक्सिंग का स्कैंडल आया था 2010 में, तो ये क्या रेप्यूटेशन है हमारी क्रिकेट टीम की बनाएगा या हमारे क्रिकेट बोर्ड की बनाएगा, तो आपने ऐसा क्यों किया, तो लोग आज बहुत भड़के हुए हैं. अच्छा जी, हसन अली जो है उनका आज एक क्लिप सामने आया है, और उसने अपनी टीम को कहा है कि आप जो ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं तो आप ये जो उस्मान खाजा है इसके सामने आपने उर्दू नहीं बोलनी, क्योंकि ये इस्लामाबाद का रहने वाला है, इसको उर्दू समझ आती है. और ये सारी की सारी स्ट्रेटजीज ने पहले भी जब हम खेल रहे थे बैनो कादर ट्रॉफी, तो हम जो जो स्ट्रेटजी बनाते थे ये सुनता था और अपनी टीम को जाके ऑस्ट्रेलियन टीम को बताता होता था. तो वो कह रहे हैं जी कि अगर आपने अब कोई अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी है तो आपने उस्मान खाजा से दूर जाके जो है बात करनी है, इसके सामने जो है वो नहीं करनी. और इसके अलावा उन्होंने
तो आप टिपिकल हम हो जाए, हम क्या करेंगे, जो नहीं करना ना वो बात करेंगे.
हाँ, लेकिन उस टीम में तो ज्यादा पठान है ना, फिर वो तो पश्तो में बात करेंगे ना, पश्तो तो इसको नहीं समझ आती. लेकिन बाहर वो कहते हैं जी उर्दू में बात ना करें, ये पहले भी हमारी स्ट्रेटेजियां सुनता था और अपनी टीम को बताता था. इसके अलावा उन्होंने कहा जी वहां की जो है ऑस्ट्रेलिया की बाउंसी ट्रैक्स हैं और टेस्ट यहां पे बेतहाशा मुश्किल हो जाते हैं. कोई भी साउथ एशियन टीम जो है वहां पे 20 विकेट्स लेने का जो है चैलेंज कबूल नहीं कर सकती, क्योंकि पिचेस उनकी बड़ी डिफरेंट है बाकी क्रिकेटिंग नेशन से, और लोकल जो प्लेयर्स हैं उनकी फेमिलियरिटी है इन कंडीशन के साथ, जो बाहर से आते हैं उनकी नहीं है. इसके अलावा उन्होंने पैट कमिंग्स जो इनके कैप्टन है ऑस्ट्रेलिया के, उसकी बड़ी तारीफ की. उन्होंने कहा जी कि वो बहुत ही जबरदस्त स्टार है. एंड जनाब एब्सोल्युटली अवर लास्ट न्यूज, आपको पता ही है कुछ अर्सा पहले हमने आपको बताया था यूएससी के जो फ्रेशमैन थे ब्रॉनी जेम्स, लेब्रॉन जेम्स के बेटे, 19 इयर्स उनकी एज थी, और लेब्रॉन जेम्स जो कि एनबीए के सुपरस्टार हैं, वो उनके बेटे को आपको पता ही है कि यहां पे समर में जुलाई 24 को कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट आया था, यानी कि एक जो है वो कार्डिक अरेस्ट आया था उनको, और उसकी वजह से इनको हटा दिया गया था बास्केटबॉल की तमाम एक्टिविटीज से. तो और हॉस्पिटलाइज रहे थे ये 3 दिन, और लेब्रॉन जेम्स बहुत ही जो है वो तकलीफ में थे उन दिनों में. तो वो कह रहे हैं जी कि अब इसको क्लियरेंस तो मिली है लेकिन ये प्रैक्टिस नेक्स्ट वीक कर सकता है कि नहीं, उसका इवैल्यूएशन अभी होना रहता है. और फैमिली जो है उन्होंने बड़ी थैंक किया इसको, मेडिकल टीम को, यूएससी कम्युनिटी को और सपोर्टर्स और फैंस को, कि आपने बड़ी दुआएं की लेब्रॉन के लिए भी और इस बच्चे ब्रॉनी के लिए भी. तो लेब्रॉन जेम्स ने अब कहा है कि जी मेरी पहली प्रायोरिटी मेरी फैमिली और मेरे बच्चे हैं. उन्होंने यूएस लेकर्स को कहा है कि जी मैं अपनी गेम मिस करूंगा क्योंकि मैं ब्रॉनी के साथ जो है रहना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं मेरा बच्चा ठीक हो जाए और वो कोर्ट में वापस आए, तो फिर मैं जो है वापस आऊंगा. तो ये मगर बहरहाल अच्छी खबर है कि
everybody was expecting, क्योंकि जब कार्डिया अरेस्ट हुआ इसको,
दैट
इज इट फॉर हिम एंड बास्केटबॉल. और हमारे लेब्रॉन जेम्स की ख्वाहिश ये है कि जिस टीम से वो खेले मैं भी उसी टीम से खेलूं, ताकि यू नो व्हाट, बाप बेटा एक साथ खेल रहे हैं, ये इसकी ख्वाहिश है. मगर अब कितनी ख्वाहिश पूरी हो सकती है, अल्लाह ताला उसको.
हाँ भाई भाई, 19 साल का बच्चा है.
हाँ.
तो हाँ, और बच्चों की तो यही छोटी छोटी ख्वाहिशें होती हैं. फिट इज गुड, इज गुड, क्योंकि आप देखें कि हम बहुत सारे जो हैं ये जो सुपर स्टार प्लेयर्स हैं, जैसे कि मेसी है, रोनाल्डो है, हम नहीं उनके देख रहे. इवन आप हिंदुस्तान के अंदर देखें, जैसे तेंदुलकर का बेटा है, थोड़े से कुछ मैचेस खेले मगर इंडिया टीम में एज सच अभी तक नहीं आ सका. और बाकियों के भी जो बच्चे हैं वो नहीं आ, तो टैलेंट जो होता है ना वो तो बड़ा रहे. आप देखें, उस दिन सिकंदर बख्त का मैं इंटरव्यू ले रही थी.
टैलेंट रिश्तेदारी नहीं देखता.
नहीं देखता. तो मैं सिकंदर बख्त का जब इंटरव्यू ले रही थी, मैंने कहा सर आपके बच्चे क्यों नहीं, एक क्वेश्चन आया था हमें, कहते मैंने अपने बच्चों में इतना टैलेंट देखा नहीं तो मैंने उनको इतना इंकरेज किया भी नहीं और तो बात तो वही है कि आप देखें. और इसी तरह वसीम अकरम से भी कुछ दिन पहले लोग बोल रहे थे कि चलो बेटे तो आपके नहीं खेलना चाहते मगर आपकी बेटी क्या खेलना चाहेगी क्रिकेट जो है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में पल बढ़ रही है, बड़ा कल्चर है वहां पे ऑस्ट्रेलिया में. तो वो कहते हैं आप मुझे नहीं पता, पता चलेगा अब थोड़ा जब बड़ी होगी. तो टैलेंट जो है ना वो तो हर किसी में नहीं आता.
इट डजंट सी कलर, रेस और रिलीजन, और इट डजंट सी रिश्तेदारी.
बिल्कुल
जिसमें है सो है, जिसका किसी से किसी क्रिकेटर या किसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है, ही कैन बिकम अ सुपर स्टार.
हाँ बिल्कुल माजेदार. तो ये बात है जी.
आप बड़ा कह रही थी कि निकले थे कभी हम घर से.
हाँ, धुनकी का गाना जब लेटेस्ट आज ही रिलीज हुआ.
धुनकी का गाना चले थोड़ा सा वो सुन लेते हैं.
हाँ,
सुनेंगे आप भी क्या याद करेंगी.
आहो बिल्कुल. वैसे भी आपको तो एसआर के बड़ा पसंद है ना माजेद भाई.
आ जाइए साहब.
हमें तो सल्लू भाई पसंद है.
मैं नहीं लगा रहा.
अच्छा ठीक है, थोड़े स्टार पर गाना.
निकले थे कभी हम घर से, घर दिल से मगर नहीं निकला. घर बसा है हर धड़कन में, क्या करें हम ऐसे दिल का. बड़ी दूर से आए हैं, बड़ी देर से आए हैं, पर ये न कोई समझे हम लोग पर. कट जाए पतंग जैसे और भटक हवाओं में, सच पूछो तो ऐसे दिल हमने बिताए हैं, पर ये न कोई समझे हम लोग यही नगर यही है बस्ती, आँखें थी जिसे तरसती, यहाँ खुशियाँ थी कितनी सस्ती, जाने पहचाने गलियाँ लगती है पुरानी सखियाँ, कहाँ खो गई वो रंग रलियाँ, बाजार में जाए के भावे बेकार किशोर शराबे, वो दोस्त वो उनके बातें वो सारे दिन सब रातें, कितना गहरा था गम किन सब को खोने का, ये कह नहीं पाए हम दिल में ही छुपाए हैं, हर न कोई समझे हम लोग फरमाए हुए, कभी हम घर से घर दिल से मगर नहीं निकला, घर बसा है हर धड़कन में, क्या करें हम ऐसे दिल का, क्या हमसे हुआ क्या हो न सका, पर इतना तो करना है जिस धरती पे जन्मे थे उस धरती पे मरना है, जिस धरती पे जन्मे थे उस धरती पे मरना है।
जी सब नाजरीन, आपने समाप्त फरमाया निकले थे कभी हम घर से, शाहरुख खान साहब की फिल्म जो आज रिलीज हुई है,
नहीं गाना गाना उसका
गाना रिलीज हुआ है,
मूवी रिलीज हो रही है December 21st को।
ये साहब सोनू निगम की आवाज में आपने गीत समाप्त फरमाया, फिल्म का क्या नाम है, डंकी।
हाँ जी, और बहुत लंबी इसके अंदर स्टार कास्ट है, बेतहाशा स्टार है इसके अंदर शाहरुख खान साहब के साथ।
ठीक हो गया जी, ठीक हो गया।
ये वैसे जो ना दिसंबर ये बड़ा बम्बास्टिक जा रहा है, ये इसमें बेतहाशा फिल्में आ रही हैं। हाँ। एक तो ये एनिमल आ गई है, सैम बहादुर आ गई है, डंकी आ रही है, फिर वो हमने बताया था आपको थोड़े दिन पहले उसकी मनोज बाजपेयी की जो है आ रही है मूवी आ रही है, और बहुत सारी और भी फिल्में आ रही हैं, बेशुमार बड़े बड़े स्टार।
ठीक है जी, घर में बैठे फिल्में देखें क्योंकि बाहर तो बर्फ है।
बर्फ है। चले बैठो घर में बैठो,
बाकी की बात है इंशाल्लाह ताला। भाई आप दो दिन के लिए, मैं आपको देखना नहीं चाहता हूँ यहाँ पर।
अच्छा, छुट्टी हाँ, दे रहे हैं आप मुझे
दो दिन की, आपको
जैसे आज आपने हरफा जी को छुट्टी दी है।
आप दो दिन के लिए आप प्लीज
मजद भाई खुदा
यानी प्लीज।
हाँ यानी प्लीज, यानी मेरे फोन भी नहीं तुम करना। हाँ। टेक्स्ट मैसेज भी नहीं भेजना
ना, एकदम एब्सोल्युटली नॉट।
हम कोई गुलाम है जो हम सैटरडे संडे भी आए।
हाँ जी, आप घर पे रहे, याशी करें, मंडे को तबियत सही रख के लेके आए हमने।
हाँ नहीं, उनका महीना गुजर गया है ना, मंडे को 4 तारीख होगी तो आना ही पड़ेगा।
चलिए साहब, बखिया की बातें इंशाल्लाह ताला मंडे को। अभी मैं आपको लिए चलता हूं प्रोग्राम इन प्रोग्रेस विद जीशान अहमद। याद रखें 24 घंटे आप 6478724900 पे हमारे साथ हो सकते हैं, या eawaz.com पे जाइए, हमें वॉच कीजिए, हमें देखिए, हमें हमारे लिए दुआएं कीजिए। चलते चलते बस आपसे ये कहता हूँ कि यू हैव अ वंडरफुल वीकेंड, बी विद योर फैमिली एंड एंजॉय इट
एंड लव देम।
and low them.
Yeah.
And you too. Low tar
bhai. I low everybody.
No, you low tar bhai.
Okay.
और मेक श्योर कि व्हेन यू एंटर टुडे गंदा बाहर का लेके अंदर मचाइएगा.
अच्छा बिल्कुल ठीक है.
वहां से कंप्लेन आई है मुझे कि भाई ये गंदे जूते लेके अंदर आ जाती है. मैंने पूरे घर की मैं सफाई करता हूँ.
ओह माय गॉड, आपको शिकायतें आ रही हैं.
हाँ जी. और आप जो है वो खामा खा के लिए सारा गंद लेके अंदर चली जाती है. तो ये भाई ये दिस इज नॉट नाइस,
नॉट फेयर.
हमारी यूनियन कह रही है. अच्छा, मर्दों की जो है
मासूम मर्द यूनियन.
हाँ, मासूम मर्द यूनियन जो है वो कहती है कि भाई ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे. हम ऐसा ना हो कि हम स्ट्राइक में चले जाएं.
MMU.
बाकी की बातें इंशाल्लाह ताला मंडे को.
इंशाल्लाह आई विल सी यू इंशाल्लाह मंडे ऑन मंडे. थैंक यू जी. बाय.
कभी मेरी अखियों की सुन.
Every time I look into your eyes, I see my paradise. The stars are shining right up in the sky, painting words of desire. Can this be?
में छुपके देख रहे थे चांद के पीछे पीछे थे. होट में छुपके देख रहे थे चांद के पीछे पीछे थे. सारा जहां देखा ना आँखों में पलकों के नीचे थे. आ चल कहीं समय से परे, समय से परे चल दे कहीं. तू भी अखियों से कभी मेरी अखियों की सुन. सुरीली अखियों वाले सुना है तेरी अखियों से. सुरीली अखियों वाले सुना दे दरा अखियों से. सुरीली अखियों वाले सुना दे दरा अखियों से.
Oh, घटाएं, सर पे नया है आसमां, चारों दिशाएं हंस के बुलाएं, तू सब हुए हैं मेहरबान।
हमें तो यही रब कसम से पता है,
तेरी ओर, तेरी ओर, हर रब तेरी ओर। हूँ मैं शाम सुबह इससे ज्यादा तुझे और चाहूँ तो क्या तेरे ही ख्यालों में डूबा रहा इससे ज्यादा तुझे और चाहूँ तो क्या बस सारे गम में जाना संग हूँ तेरे हर एक मौसम में जाना संग हूँ तेरे अब इतने इम्तिहान भी ना लेने